नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थीं। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेंस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। भूकंप और उसके बाद आए झटकों से क्षेत्र में सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बाद में उत्तरी सुमात्रा में भी 6.4 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से 163 किलोमीटर नीचे था। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2, जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पाडिकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।